আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন, والصلاه والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے ملفوظات غوث اعظم. آپ جانتے ہیں کہ جب انسان عبادت و ریاضت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اپنے نفس کا جہاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ سارے کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب اور زبان سے حکمت کے چشمے جاری فرما دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین، اولیاء کاملین کے ملفوظات، یعنی وہ الفاظ جو ان کی مقدس پاکیزہ زبانوں سے نکلے، بڑا اثر رکھتے ہیں. اور اکثر ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم 2 گھنٹے کی تقریر میں وہ بات نہیں کر سکتے جو اللہ کا ولی 2 جملوں میں کر دے، اور یہ بالکل حقیقت ہے. اور یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. ان کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبولیت حاصل کرتے ہیں اور دلوں پر اثر کرتے ہیں. آئیے آج اسی چیز کو دیکھیں اور غور کریں کہ یہ وجہ کیا ہے کہ ہم بھی تبلیغ کرتے ہیں اور وہ بھی تبلیغ کرتے تھے، لیکن اس تبلیغ میں اتنا زمین آسمان کا فرق کیوں ہے؟ ان کے 2 جملے زبان سے نکلے ہوئے لوگوں کے دلوں پر اثر کر جاتے تھے، اور وہ فوراً گناہوں سے تائب ہو کر سچے پکے نیک مومن مسلمان بن جاتے تھے، اور دوبارہ کبھی وہ پھر گناہ کی طرف نہیں جاتے. جبکہ آج ہم تبلیغ کر رہے ہیں، تقاریر کر رہے ہیں، محافل منعقد کر رہے ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. تو آج ہم غور کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور یہ غور جو کریں گے، یہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات کی روشنی میں، یعنی آپ کے جو ملفوظات ہیں ان کی روشنی میں. آئیے ذرا دیکھیں، سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مجلس میں آپ نے علماء سے خطاب فرمایا. آپ نے سنا ہے نا کہ آپ کی مجلس میں علماء، صوفیہ، مشائخ، عوام الناس، اس کے علاوہ غیر مسلم، یہ سب ہی آپ کی محافل میں آتے تھے. تو ایک مرتبہ علماء کا مجمع تھا، آپ نے اس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے مدعی علم، عمل کے بغیر تمہارے علم کا کوئی اعتبار نہیں، اور اخلاص کے بغیر تمہارے عمل کی کوئی وقت نہیں، کیونکہ اخلاص کے بغیر عمل ایک جسم بغیر روح کے ہے. اب ذرا سا الفاظ پہ غور کریں کہ تمہارے علم کا کوئی اعتبار نہیں، کس لیے؟ عمل کے بغیر. آپ جانتے ہیں کہ علم اور عمل دونوں لازم اور ملزوم ہیں. غوث اعظم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم نے علم حاصل کیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو پھر یہ بیکار ہے. ظاہر انسان کتنا بڑا عالم ہو جائے، لیکن اپنے علم پر جب وہ عمل نہیں کرے گا تو اس کا علم بیکار ہے. ہمارے سلسلہ اشرفیہ کے بانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ لطائف اشرفی میں فرماتے ہیں، علم بغیر عمل کے ایسا ہیں جیسا جسم بغیر روح کے. اب آپ غور کریں، علم کے ساتھ عمل لازم ہے. آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے عالم ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ علم ان کے پاس ہے لیکن عمل اس کے بالکل برعکس، بالکل خلاف. علم کچھ کہتا ہے، عمل کچھ کہتا ہے، ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے، علم کچھ ہے، عمل کچھ ہے، اخلاق کچھ ہے، یعنی ان تمام چیزوں میں تضاد ہے. اسی وجہ سے زبان میں اثر پیدا نہیں ہوتا. غوث اعظم جو فرما رہے ہیں کہ عمل کے بغیر تمہارے علم کا کوئی اعتبار नहीं है, यानी जो कुछ तुमने इल्म हासिल किया है उस पर अमल करो, और जब तक अमल नहीं तो उस वक्त तक उसका कोई एतबार नहीं। अब आप और दीगर बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन को देखें, जिसकी हिस्ट्री आप उठाएं, उनकी सवाने हयात, उनके मामूलात, उनके वाकयात जब हम देखते हैं पढ़ते हैं तो हमें एक चीज़ वाज़े तौर पर नज़र आती है, और वो ये है कि इल्म के साथ अमल और अमल के साथ इखलास, ये दो चीज़ें उनकी हयात मुबारक में हमें नज़र आती। जिस बुज़ुर्ग की हिस्ट्री आप उठाएं, आप देखें हज़रत ज़ुहदुल अंबिया बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह, मशहूर वाकया के एक औरत आपके पास आई अपने बेटे को लेकर जो गुड़ खाता था, कहा हुजूर आप इसको नसीहत करें कि गुड़ ना खाए। गुड़ खाना कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो खाता था। आपने फरमाया अभी इसको ले जाओ, कल आना, कल हम तुम्हें बताएंगे। वो चली गई। दूसरे दिन जब वो आई तो आपने उसके बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बेटा गुड़ नहीं खाना, और फरमाया चले जाओ। उसको बड़ी हैरत हुई कि इतनी सी बात, यही बात तो आप कल फरमा देते। और उसने फौरन कहा कि हजरत ये तो अजीब बात हुई, आपने कहा कि कल आना, मैं चली गई, फिर दोबारा आई, इतनी मुशक्क़त मुझे उठानी पड़ी, सफ़र किया मैंने, जो बात आपको आज कहनी थी आपने कल क्यों नहीं कही। अब आप सुने बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद जो सुनने और याद रखने के काबिल है। फरमाया जिस अमल के लिए तूने मुझसे कहा, यानी मैं इसको रोकूं, उस तरफ इशारत, वो अमल मैं खुद भी करता था, तो जब मैं वो खुद करता था तो मैं इसको कैसे रोकता। कल मैंने ये सोचा कि मैं आज से गुड़ नहीं खाऊंगा, उसके बाद मैंने तुम्हें आज बुलाया और फिर मैं इसको नसीहत कर रहा। बाबा फरीद ये बताना चाहते हैं कि जिस अमल का इर्तिकाब हम कर रहे हैं उसी अमल से दूसरों को कैसे रोक रहे हैं। अगर आप दूसरों को रोक रहे हैं तो पहले आप खुद उससे बच जाएं, उससे इज्तनाब करें, उससे परहेज करें, और अगर कोई खुदा ना खास्ता गुनाह है तो उसके लिए सच्चे दिल से तौबा करें, फिर आप अगर नसीहत करेंगे तो आपकी ज़बान में, आपकी नसीहत में असर होगा। यही इन बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन का मामूल था। आप जिस बुज़ुर्ग की हिस्ट्री उठाकर देखें, पहले अमल है उसके बाद नसीहत। जो कुछ उन्होंने हासिल किया अपने इल्म पर पूरी इस्तेकामत के साथ उन्होंने अमल किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि खुद वो काम कर रहे हैं और दूसरों को उससे रोक रहे हैं। क़ुरान मजीद फरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलाल हुआ मनवालु इरशाद फरमाता है लिमा तकूलूना माला तफालून, तुम वो बात क्यों कहते हो जो खुद करते हो। और आज अगर हम जायज़ा लें तो अक्सरियत ऐसे लोगों की नज़र आएगी कि जिस काम से दूसरों को रोक रहे हैं वही काम खुद कर रहे हैं, तो फिर ज़बान में कैसे असर पैदा हो। ऐसे मुबल्लिग की ज़बान में असर नहीं होगा, ऐसे मुकर्रर की ज़बान में, ऐसे आलिम की ज़बान में कभी असर नहीं हो। तो खानकाही निज़ाम ही यही है, और बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन की तालीमात ही यही है कि अपने इल्म पर पहले खुद अमल किया जाए, उसके बाद उस इल्म को आगे पहुँचाया जाए। अगर हम खुद अमल नहीं करेंगे और हम आगे पहुँचाएंगे, दूसरे कैसे अमल करेंगे। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम पहले अपने इल्म पर खुद अमल करें। अब आइए आगे देखें, सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादर जीलानी हसन अल हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये चीज़ समझाने के बाद एक और बड़ी अहम चीज़ बता रहे हैं। पहले तो आपने फरमाया ना कि अमल के बग़ैर तुम्हारे इल्म का कोई एतबार नहीं, और इखलास के बग़ैर तुम्हारे अमल की कोई वक़्त नहीं, क्योंकि इखलास के बग़ैर अमल एक जिस्म है बग़ैर रूह के। देखिए इखलास अल्लाह की रज़ा के लिए एक चीज़ होती है ना, लोगों को दिखाने के लिए। आपने हज किया, लोग मुझे हाजी समझे, नमाज पढ़ी, लोग मुझे नमाजी समझे, रोज़ा रखा के लोग रोज़ेदार समझे, लोगों के सामने इबादत और रियाजत कर रहे हैं, लोग समझे बहुत बड़ा आबिद है, बहुत बड़ा मुत्तकी है। ये रियाकारी, ये दिखावा है, ये अपने आप को ये दिखाना कि मैं बहुत नेक मुत्तकी परहेज़गार, और एक अमल होता है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। इसीलिए बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन जब इबादत और रियाजत करते थे, मुजाहिदा करते थे, चिल्लाकशी करते थे, जिक्र अजकार करते थे, उसके लिए उन्होंने एक हुजरा बना लिया। हम देखते हैं ना जगह जगह आज भी हुजरे मौजूद हैं। आप लाहौर चले जाएं तो वहाँ पर सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज का हुजरा हजरत दाता गंजा अली ज्वेरी के कदमों की जाने। आप पाक पटन शरीफ चले जाएं तो हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का हुजरा पाक पटन शरीफ में बाबा साहब की खानकाह में मौजूद। आप पंडवा शरीफ चले जाएं, वहाँ हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी नव्वरल्लाह मरकदहू का हुजरा, जो उनके पीर हजरत अलाउद्दीन गंज नबात रहमतुल्लाह अलैह उनकी खानकाह में मौजूद। और ये बुजुर्गान दीन का एक तरीका होता था, जब मुरीदीन को तालीम देते थे, चिल्लाकशी कराते थे, इबादत और रियाजत कराते थे, तो ऐसा नहीं कि सबको बताकर या खुले मैदान में या खुली जगह, नहीं, एक ख़ास जगह, एक जगह को मुतय्यन कर दिया, एक हुजरा दे दिया, इसी हुजरे में तुम्हें बैठना है, यहीं पर चिल्ला करना है, यहीं रियाजत, यहीं इबादत, यहीं मुजाहिदा, यहीं जिक्र, जिक्र बिलजहर हो या जिक्र खफी हो, इसी जगह करना, तू हो तेरा जलवा हो और गोशा तन्हाई। तो इन तमाम हुजरों का मकसद यही है कि दुनिया के झमेलों से अलग होकर, तमाम ख्यालात जहन से निकाल कर, खुशू और खुजू के साथ अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए इंसान एक जगह बैठ जाए। जैसे कि हम इतिकाफ़ करते हैं ना, इतिकाफ़ में एक जगह बैठ जाते, मस्जिद से बाहर निकलना मना है, तो इसी तरह हुजरे में बिठाया जाता है, गोया वो मोतकिफ होता है चंद दिनों के लिए। अब कोई 3 दिन के लिए, कोई 40 दिन के लिए, जैसा उसके शेख ने बताया, जितने दिन का चिल्ला बताया उतने दिन उसने कर लिया। तो कहने का मकसद ये है कि रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो, खुलूस हो। और इखलास का मतलब क्या है? अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए। हमने रोज़ा रखा मौला तेरी रजा के लिए, नमाज पढ़ी तेरी रजा के लिए, हज किया तो तेरी रजा के लिए, सदक़ात व खैरात किए तो तेरी रजा के लिए, यानी जो भी अमल किया सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए, इसी को कहते हैं इखलास। जब इखलास दिल में हो तो रियाकारी नहीं होती, और जहां रियाकारी हो वहां इखलास रुखसत हो जाता। आज हम अपने माशरे पर अगर नजर डालते हैं, हर जगह हमें दिखावा रियाकारी नजर आती है। यतीमों बेवाओं की मदद की जा रही है तो वो अखबार में फोटो आ रहे हैं, किसी को कुछ दिया जा रहा है तो वो अखबार में फोटो आ रहे हैं, दीगर जगह जो है अपना नामो नमूद, अपनी शोहरत। जबकि बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन ने इखलास को पेश नज़र रखा और रियाकारी को ख़त्म कर दिया, और इसी चीज़ की उन्होंने तालीम दी। तो गौसे आज़म ने आगे क्या फरमाया, अमल के बग़ैर इल्म का कोई एतबार नहीं और इखलास के बग़ैर अमल की कोई वक़्त नहीं। यानी आपने नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदक़ात, खैरात सब कुछ आपने कर लिए, लेकिन पेश नज़र दिखावा है, रियाकारी है, तो वो जितने भी नेक आमाल हैं गौसे आज़म फरमाते हैं उसकी कोई वक़्त नहीं, वो सब ख़त्म हो गए। और अगर एक अमल है जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए है, तो आप समझें कि वही अमल अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में मंजूर और मकबूल हो जाए। अगले इरशाद की तरफ हम चलते हैं। आप फरमाते हैं इखलास की अलामत, पहले तो इखलास का जिक्र किया ना कि इखलास के बगैर अमल की कोई वक़्त नहीं, अब गौसे आज़म इखलास की अलामत बयान फरमा रहे हैं। फरमाते हैं पहले अमल में इखलास पैदा कर, यानी आपने जो पहला इरशाद हमने पढ़ा अमल में इखलास, अब फरमाते हैं तुम्हारे इखलास की अलामत यह है कि तुम लोगों की मदहा से बेनियाज हो जाओ। यानी तारीफ, हम चाहते हैं ना हमारी तारीफ करें, हमने ये काम किया, फला तारीफ करे, वो आकर तारीफ करे, गौसे आज़म फरमाते हैं इससे बेनियाज हो जाओ, तुम्हें उनके माल और दौलत की तमा ना रहे, बल्कि तुम ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करो, तुम्हारा अमल खालिस अल्लाह के लिए हो ना कि नेमत के लिए, यानी किसी और चीज के लिए नहीं, खालिस अल्लाह की रजा के लिए। मखलूक के पास जो कुछ है महज छिलका है, खालिक के पास मगज है। गौसे आज़म फरमा रहे, तुम्हारी नजर मखलूक के माल पर ना हो, उनकी दौलत पर ना हो, उनकी दीगर चीजों पर ना हो कि मैं अगर ये काम करूं तो मुझे इतने पैसे मिल जाएं, मैं ये काम करूं तो मुझे ये माल मिल जाए, मैं ये काम करूं तो मुझे ये दौलत मिल जाए। फरमाया तुम्हारी नज़र सिर्फ खालिक पर होनी चाहिए, इसलिए कि मखलूक के पास जो कुछ है ये सिर्फ छिलका है और जो असल मगज है वो खालिक के पास। इसी चीज़ को दूसरे अंदाज में हज़रत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी नव्वरल्लाहु मरकज़हु फरमाते हैं, असबाब पर भरोसा करने के बजाय मुसब्बिबुल असबाब पर भरोसा करो। यानी ये ज़ाहरी चीज़ें जितनी भी हमें नज़र आ रही हैं, हम सोचते हैं ये काम फलां के राज़ी होने से हो जाएगा, ये काम उस दोस्त के राज़ी होने से हो जाएगा, ये काम उस सेठ के राज़ी होने से हो जाएगा। फरमाया नहीं, ये सब असबाब हैं, तुम्हारी नज़र मुसब्बिबुल असबाब पर होनी चाहिए। सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला ने भी यही फरमा रहे हैं कि तुम्हारी नज़र मखलूक के माल पर, दौलत पर या किसी भी नेमत पर ना हो, इसलिए कि इनके पास जो कुछ है ये सिर्फ महज एक छिलका है, असल चीज़ असल मगज ये खालिक़े कायनात के पास। और अमल वही मकबूल है जिसके अंदर खुलूस हो। एक बुजुर्ग ने एक आयत बयान की, एक मकाम पर एक आबिद रहता था अपने हुजरे में इबादत में मसरूफ, उस इलाके में कुछ लोग एक दरख्त की पूजा करने लगे, इबादत करने लगे, सजदे करने लगे, झुकने लगे, उसको पूजने लगे। लोग आबिद साहब के पास आए, कहा हजरत आपका जमाना है और ये शिर्क हो रहा, लोग जाकर उस दरख्त को सजदे कर रहे हैं, उसके सामने झुक रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। इन्होंने फौरन कुल्हाड़ी ली और रवाना हो गए, अभी जाकर मैं उस दरख्त को ख़त्म कर दूंगा, ना रहे बांस ना बजे बांस। रास्ते में शैतान खड़ा हो गया इंसानी लिबास में, कहाँ जा रहे हो? कहाँ दरख्त को काटने, क्यों जा रहे हो? वहाँ शिर्क हो रहा, लोग अल्लाह को छोड़कर इसको सजदा कर रहे हैं, अल्लाह को छोड़कर इससे मांग रहे हैं, इसके सामने झुक रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, पूज रहे। इसने कहा मैं नहीं जाने, इन्होंने कहा नहीं मैं जाऊँगा। दोनों में लड़ाई हुई, यहाँ तक के आबिद ने शैतान को गिरा दिया जो इंसानी लिबास में था, इंसानी हैयत में, और उसके सीने पर सवार हो। लेकिन आप जानते हैं कि बड़ा मक्कार है, उसके पास एक हरबा ऐसा है जिससे उसने बड़े बड़े आबिदों जाहिदों को दुनियादारों को सबको बहकाया, और वो है लालच। उसने वही हरबा इस्तेमाल किया और उन आबिद साहब से कहा एक बात अगर मेरी मान लें तो फिर आप देखें कि आपका काम हो जाएगा। क्या बात? आज आप वापस चले जाएं, इस दरख्त को ना काटें। और उन्होंने कहा नहीं मैं तो वापस नहीं जाऊंगा। अच्छा अगर मैं चला गया तो क्या होगा? अगर आज आप वापस चले गए और इसको इसी तरह रहने दिया, यानी जो लोग वहाँ कर रहे हैं जाहिर है वो करते रहेंगे, तो आपके तकिए के नीचे से एक अशरफी रोज़ाना निकलेगी। लालच पैदा हो गई, उन्होंने कहा ठीक, वहीं से वापस हो गए, शैतान का हरबा कामयाब हो गया। अब क्या हुआ? खुलूस लालच में बदल गया। पहले खुलूस था ना, अब लालच पैदा हो गई उस एक अशरफी की वजह से। वापस सुबह हुई, तकिया हटाया, एक अशरफी निकल आई। दूसरा दिन हुआ, फिर जब उठे देखा अब कुछ भी नहीं निकला, बड़ा गुस्सा आया कि अच्छा इसने तो मुझे धोखा दिया, ये तो कहता था रोजाना एक अशरफी निकलेगी। दोबारा कुल्हाड़ी उठाई, फिर रवाना हुए, फिर वही शख्स खड़ा है, यानी शैतान जो था इंसानी शक्ल में। फिर वही मुकालमा हुआ, कहाँ जा रहे हो? दरख्त काटने जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? शिर्क हो रहा है, मैं नहीं जाने दूंगा। इन्होंने कहा नहीं मैं जाऊँगा। फिर दोबारा लड़ाई हुई, लेकिन अब क्या हुआ? अब शैतान ने इनको गिरा दिया और इनके सीने पर सवार हो गए, और इन्होंने अपने अंदर कमज़ोरी नकाहत महसूस की, वरना एक दिन पहले इनके अंदर ताकत थी, इन्होंने गिरा दिया था। बड़े परेशान हुए, ये क्या हुआ? आबिद ने शैतान से पूछा कि कल तो मैंने तुम्हें गिरा दिया था, आज ये क्या बात हुई? शैतान ने कहा मसला ये है, कल जब तुम जा रहे थे तो तुम्हारी नियत में खुलूस था, तुम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जा रहे थे, कि यहां पर ये शिर्क जो हो रहा है, जो गलत काम हो रहा है, इसे मैं रोकूं। और आज जो तुम जा रहे हो, तुम उस अशरफी के लिए जा रहे हो जो तुम्हें कल मिली और आज ना मिली, ताकि मैं फिर रोकूं, फिर मैं तुमसे वादा करूं कि तुम्हें मिलेगी और तुम वापस चले जाओ। तुम्हारे अंदर लालच पैदा हो गया, मैंने इस हरबे से न जाने कितनों को गुमराह कर दी। कहने का मकसद यह है कि जब अमल में इखलास होता है, खुलूस होता है, तो फिर उस अमल में ताकत भी होती, फिर उस इंसान में रूहानी कुव्वत भी होती। सैयदना गौसे आजम के सर पर नूर की चादर तन गई, आवाज आई, अब्दुल कादर हमने तुम पर नमाज माफ कर दी, हर हराम चीज तुम पर हलाल कर दी। फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अजीम। क्यों? अमल में खुलूस था ना, कोई रियाकारी, कोई दिखावा, कोई बनावट, कुछ नहीं थी। शैतान मकरूह सूरत में सामने आ गया और आके कहते हैं, अब्दुल कादर मैंने इस हरबे से हजारों को बहका दिया, गुमराह कर दिया, इस वक्त तुम्हारे इल्म ने तुम्हें बचा लिया, वरना मैं तुम्हें गुमराह कर दे। फरमाया बदबख्त तू अब भी मुझे धोखा दे रहा, मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मेरे खुदा के फजल ने मुझे बचा लिया। यहीं से गौसे आजम ने तालीम दे दी कि हिदायत पर रहने के लिए सिर्फ इल्म काफी नहीं, खुदा का फजल भी जरूरी है, नबी पाक की निगाह करम भी जरूरी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने का मकसद यह है कि ये जितने बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन हैं, इन्होंने इबादत की, रियाजत की, मुजाहिदा किया, चिल्ला कशी की, अपने नफ्स का जिहाद किया, दुनिया को तर्क करके गारों में, हुजरों में जाकर बैठ कर इबादत की। किस लिए? सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। अगर दुनिया को दिखाने के लिए करते तो फिर तो बाहर निकल के करते, लोगों को बताते। और दूसरी बात यह है कि जितनी इबादत की, कभी जबान पर यह लफ्ज नहीं आया कि हमने ये चिल्ला किया, हमने फला काम किया, हमने फला काम किया, नहीं। अगर कभी हुआ तो कहा जो कुछ है वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, हमने दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, हमने अपनी जात के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादर जिलानी हसन अल हुसैनी रजी अल्लाह ताला अन्हु हमें यहां पर दो चीजों की तालीम दे रहे हैं, एक इल्म के साथ अमल, दूसरे अमल के साथ इखलास। और तबलीग के लिए यही दो चीजें बहुत जरूरी हैं। इल्म तो जरूरी है, लेकिन इल्म के साथ अमल भी जरूरी है और अमल के साथ इखलास भी जरूरी है। जब ये दो चीजें किसी भी मुबल्लिग में होंगी, किसी भी आलिम में होंगी, कभी भी उसकी तबलीग बेमाना बेअसर नहीं होगी। गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जिलानी जब खिताब फरमाते थे, लाखों का मजमा होता था, गैर मुस्लिम भी आते थे, लेकिन जब खिताब ख़त्म होता था तो कितने थे जो मुसलमान होकर जाते, और कितने मुसलमान थे जो अपने गलत कामों से ताइब होकर सच्चे दिल से सच्चे पक्के मोमिन मुसलमान बनकर जाते। उसकी वजह क्या थी? गौस की ज़बान से जो लफ्ज़ निकलता था उनके दिलों पर असर करता था, और उसकी वजह यही थी कि इल्म भी था, अमल भी था, इखलास भी था, हर चीज थी। इस वजह से जबान में असर था, और जो भी आपकी गुफ्तगू सुनता था, आपकी तकरीर सुनता था, आपकी महफिल में बैठता था, आपकी मजलिस में आपके खिताबात को सुनता था, जो जो लफ्ज़ गौस की जबान से निकल रहा होता था उसी वक्त लोगों के दिलों पर असर कर रहा होता। तो हमें यह चाहिए, अगर हम जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो पहली चीज इल्म हासिल करें, और दूसरी चीज इल्म जो हासिल किया है उस पर अमल करें, और तीसरी चीज ये कि जो भी अमल करें उसके अंदर इखलास हो, रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो, बनावट ना हो। और जो चीज आज आम है, बिल्कुल आप जहां भी देखें रियाकारी है, दिखावा है, बनावट है, कोई कुछ नहीं भी करता फिर कहता है कि मैंने फला काम कर दिया, किसी ने थोड़ी सी इबादत की तो उसका ढंडोरा पीट दिया, मैंने ये कर दिया। अरे उन बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन की तरफ देखिए कि जिन्होंने 12-12 साल, बल्कि 20-20 साल उन्होंने इबादत की, लेकिन कभी जबान पर एक लफ्ज नहीं आया कि हमने 20 साल तक ये काम किया, या हमने 40 साल तक ये काम किया, या हमने 50 साल तक ये काम किया। कितनी मुद्दत गुजर गई लेकिन उनकी जबान पर यही आया कि हमने कुछ नहीं। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। उनका मतमय नजर यह था, उनका मिशन यह था कि हमने जो कुछ इबादत की है, और हकीकत हाल भी यही है कि इंसान जो कुछ करता है अल्लाह की तौफीक से करता है। उसको यही चाहिए कि नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, ज़कात, सदक़ात, खैरात, जितने भी काम करे उसकी नस्बत अल्लाह की तरफ करे कि मौला तेरे करम से मैंने किया। अगर ये कहे कि मैंने किया है तो ये उसकी भूल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरबाब तरीक़त और असहाब हकीकत पर यह बात हम वाज़े कर देना चाहते हैं कि आप जो भी अमल करें सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें, इखलास पैदा करके करें, फिर आप देखें कि वो अमल उसी वक्त बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल हो जाएगा। और अगर उसमें थोड़ा सा भी रियाकारी, दिखावा, बनावट, इसका शायबा भी पैदा हो गया तो वो अमल अकारत हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन की तालीमात यही हैं। सैयद गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादर जीलानी हसन अल हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला खिताब फरमाते थे तो रिवायत में आता है कि 400 कलम और दवात लेकर आपके उस खिताब को सुनने के लिए बैठते थे और वो तहरीर करते थे, यानी जो अल्फाज आपके ज़बान मुबारक से निकलते थे उसको लिखते थे। 400 कलम दवात शुमार की गई आपके उस मजमे में, उस खिताब में, वही मलफूजात आज तक चले आ रहे। आज भी वो अल्फाज जो मेरे गौस की ज़बान से निकले आज भी चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, उनसे रोशनी निकल रही है। और सालिकान राह तरीक़त उन चमकते दमकते अल्फाजों पर अमल करके, उस रोशनी को हासिल करके आज भी हिदायत की राह पर गामजन हो रहे हैं और कामयाबी हासिल कर रहे। अल्लाह तबारक व ताला हम अहले तरीक़त को सैयद नगौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादर जीलानी हसन अल हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इन मलफूजात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इनके ज़रिए हम सबको हकीकी मानों में इखलास अमल की दौलत से मालामाल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।